दिन भर तारीख 13 अगस्त दिन गुरुवार, मैं हूं विनीत खरे। संसद का मॉनसून सत्र खत्म, कामकाज न होने के लिए कांग्रेस भाजपा ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मैगी से प्रतिबंध हटाया।
जो ऑर्डर कोर्ट ने सेटिसाइड किया उसका इफेक्ट तो खत्म हो चुका है, वो तो मैगी ने पूरा माल मार्केट से खुद ही हटा लिया था, तो उसका कोई मैगी पे असर नहीं होने वाला है।
कश्मीर के शोपिया में विस्फोट में 11 घायल।
ये ग्रेनेड था या और कोई कुछ किस्म का था, वो मैं बता दूं आपको, ये आर्मी ने किया या मिलिट्री ने किया, एंड आई एम नॉट एन अथॉरिटी टू से लाइजर।
वैज्ञानिकों के मुताबिक नोटों में 78 तरह के संक्रमण पहुंचाने वाले कीटाणु मौजूद और चीन के तियानजिन में धमाकों में कम से कम 50 की मौत। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। संसद के हंगामेदार मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख विरोधी पार्टी कांग्रेस को की तीखी आलोचना की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर संसद का मॉनसून सत्र बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि गतिरोध के लिए जिम्मेदार विपक्ष के 23 सांसदों के संसदीय क्षेत्रों में जाकर जनता को इस बारे में बताया जाएगा। चीन के औद्योगिक इलाके तियानजिन में हुए दो बड़े धमाकों में कम से कम 50 लोग मारे गए हैं और 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। चीन के नेताओं का कहना है कि पीड़ितों की मदद के लिए जो कुछ वो किया जाना चाहिए वो किया जाएगा। जहरीले रसायन और गैस से भरे गोदाम में हुए धमाके ने इमारत को बर्बाद कर दिया और हजारों की संख्या में कारों में आग लग गई। इस घटना में हताहत हुए लोगों ने अस्पताल जूझ रहे हैं। इस बीच अग्निशमन के दस्ते आग से निपट रहे हैं। पर्यावरण सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख वेन वुरोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे धमाके के बाद फैले प्रदूषण के स्तर पर नजर बनाए हुए हैं। पर्यावरण सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख वेन वुरोई का कहना है कि अगर आपका लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेंगे तो ये आपके लिए घातक हो सकता है, लेकिन हम लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और फिलहाल इसने अपनी मानक सीमा को पार नहीं किया है। अलकायदा के नेता अयमन अल जहरी तालिबान के नए नेता मुल्ला अख्तर मंसूर को अपना नेता स्वीकार कर लिया है। अलकायदा ने एक ऑडियो संदेश में ये घोषणा की है। संवाददाता का कहना है कि तालिबान के अंदर ही सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा है और अलकायदा अल जहरी के मुल्ला मंसूर को समर्थन दिए जाने के बाद उनकी स्थिति और मजबूत होगी। तालिबान ने पिछले महीने ही मुल्ला उमर की मौत की पुष्टि की थी और मुल्ला अख्तर मंसूर को अपना नेता बनाए जाने की घोषणा की थी। ग्रीस की अर्थव्यवस्था ने चौंकाते हुए विकास की राह पर लौटने के संकेत दिए हैं। ताजा आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि इस साल की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में 1% की बढ़ोतरी हुई है। ये वो समय था जब राहत पैकेज पर अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के साथ ग्रीस की बातचीत नाकाम हो गई थी और देश भर के बैंक 3 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए थे। ग्रीस की संसद एक विवादित राहत पैकेज पर वोटिंग की तैयारी में जुटी हुई है। उत्तर पूर्वी बगदाद में हुए धमाके में 50-60 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इराक में अधिकारियों का कहना है कि ट्रक में लदे रखे गए बम से यह धमाका हुआ। यह धमाका जमीला बाजार में हुआ जो एक सब्जी मार्केट है। यह बाजार सदर सिटी में है और यह एक शिया बहुल जिला है। सुन्नी जिहादी समूह इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि शिया मिलिशिया को निशाना बनाकर ये हमले किए गए थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में दिन भर आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। आज संसद के हंगामेदार मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था। आज भी दोनों दल यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को संसद में कामकाज नहीं हो पाने के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे। एक तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान आ रहे थे तो दूसरी ओर राहुल गांधी तीखे हमले कर रहे थे। दिल्ली से सलमान रावी की रिपोर्ट।
आई एम कॉन्फिडेंट that in the coming sessions we will continue to work better and more. House stands adjourned, sign it.
संसद का मॉनसून सत्र गुरुवार को जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही कांग्रेस और एनडीए के नेताओं ने सड़क का रास्ता चुन लिया। कांग्रेस ने संसद के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा।
सदन में आना शुरू करो।
वहीं अप्रत्याशित रूप से सत्तारूढ़ एनडीए के 300 सांसदों ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी सहित सभी बड़े नेता शामिल थे। इस विरोध मार्च के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि लोकतंत्र और कांग्रेस एक साथ नहीं जा सकते।
कांग्रेस और डेमोक्रेसी एक साथ नहीं जा सकते। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र का हत्या करके उन्होंने इमरजेंसी लगाया, सबको जेल में डाला। अभी हाउस में भी आपने देखा बहुत हंगामा किया, फिर जब उनको मौका मिला बोला, फिर अंत में सुषमा जी को बोलने नहीं दिया। क्या लोकतंत्र है? और वो कह रहे न्याय करो, क्या न्याय करना।
इससे पहले एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि संसद में कांग्रेस का व्यवहार इमरजेंसी जैसा था। दूसरी तरफ पार्टी मुख्यालय पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना था,
कांग्रेस पार्टी के चेहरे के बारे में किसी को अगर गलत फहमी थी तो उनका भी ज्ञानवर्धन बहुत हुआ है, और इसके संबंध में जो एक प्रतिक्रिया है जो पिछले कुछ सप्ताहों में देखने को मिली है वो और तीखी होगी। आज सत्र समाप्त होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हुआ, उसके बाद एनडीए के सभी एमपीज जो मार्च किए वो कोई प्रोटेस्ट मार्च नहीं था, ये एक प्रयास था कि संसदीय प्रणाली के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, ये उसको हाईलाइट करने का एक प्रयास था। आज हम लोगों ने यह भी तय किया कि इस रवैये के खिलाफ जनता में भी खूब तीखा प्रचार हो।
संसद का मॉनसून सत्र बेशक खत्म हो गया हो, मगर आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर और भी सघन हो गया जब कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा,
ब्लैक मनी नेटवर्क का प्रोटेक्शन, सुषमा जी उसमें फंस गई क्योंकि उन्होंने उनका रिश्ता है ललित मोदी जी का और वो अपने आप को बचाने के लिए उस नेटवर्क की मदद कर रही है। मैं मोदी जी से कह रहा हूँ, ललित मोदी जी से नहीं, नरेंद्र मोदी जी से। प्रधानमंत्री ने बहुत वायदे किए थे और दुख की बात है कि वो यहाँ अंदर नहीं आ पाए। मुझे लगता था, मैं उनसे चुनाव लड़ा, मुझे लगता था ठीक है हम चुनाव हार गए मगर आदमी में दम है, मुझे ये लगता था। मुझे आज लग रहा है कि आदमी में दम नहीं।
कांग्रेस के नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी एक संवाददाता सम्मेलन में ललित मोदी को भारतीय यात्रा दस्तावेज की जगह ब्रितानी यात्रा दस्तावेज मिलने को चुनौती दी।
And if so, under which provision of the RTI Act?
चिदम्बरम कह रहे थे कि ललित मोदी ने लंदन में भारतीय उच्चायोग में आवेदन क्यों नहीं दिया। वो कह रहे थे कि ललित मोदी के पासपोर्ट के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों दायर नहीं की। सरकार मौजूदा सत्र में जीएसटी विधेयक पारित कराना चाहती थी, मगर लगातार रहे गतिरोध की वजह से ये बिल पारित नहीं हो पाया। हालांकि सरकार ने इस बिल को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र आहूत करने का विकल्प खुला रखा है। राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट की समिति ने लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के बाद सत्रावसान करने की सिफारिश नहीं करने का निर्णय लिया है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
संसद में कामकाज ठप होने के कारण कई महत्वपूर्ण बिल पास नहीं हो सके और आलोचकों के अनुसार करोड़ों का नुकसान हुआ। रिसर्च संस्था पीआरएस लेजिस्लेटिव ने इस बारे में आंकड़े जारी किए हैं। मैंने इन आंकड़ों पर अपने साथी जुबैर अहमद से बात की।
देखिए, पिछले 15 सालों में कम से कम ये देखा गया है कि इस बार जो राज्यसभा के पूरे सेशंस थे वो दूसरा सबसे कम जो इसमें बिजनेस हुआ है वो था, पहला जो था 2010 में हुआ था। तो पिछले 15 साल में इतना कम इसमें बिजनेस हुआ, ये एक कोई सराहनीय बात नहीं है। और इसकी खास वजह हम सब जानते हैं कि जीएसटी बिल के कारण कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का अपना रवैया दिखाया और हर सेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, जिसके कारण जो 11 बिल पास होने थे उसमें से एक भी पास नहीं हो पाया। और ये कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी बिल पास नहीं हो पाया राज्यसभा से।
जी, और इस कुछ आंकड़े हैं आपके पास जो पीआरएस संस्था है वो ट्रैक करती है कि किस तरह से बिजनेस हुआ, आंकड़े क्या कह रहे हैं?
देखिए, आंकड़ों के अनुसार जो उन्होंने हमें भेजा है उसमें यही बताया है। पहली बात यह कि 15 साल में दूसरी मर्तबा राज्यसभा का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा है, और इसके अलावा जो सिर्फ 2% क्वेश्चंस जो है वो उसके जवाब दिए गए हैं। लोकसभा में 13% क्वेश्चंस आंसर किए गए जबकि राज्यसभा में केवल 2% क्वेश्चंस को का जवाब दिया गया। और राज्यसभा का जो पूरा बिजनेस सेशन है वो केवल 2% चल पाया जबकि लोकसभा 48% जो सेशन चले उसमें लोकसभा में। इससे ये भी साबित होता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनको पता था कि जीएसटी बिल सबसे उनके लिए महत्वपूर्ण है और उनको एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी कि कांग्रेस को कैसे आइसोलेट करें, अलहदा करें बाकी विपक्ष की पार्टियों से। उसमें कहीं न कहीं बीजेपी कामयाब नहीं रही। अब आप सोशल मीडिया अगर देखेंगे तो लोग ये कह रहे हैं कि मॉनसून सत्र को मॉम सन सेशन, मतलब कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का सेशन, उनकी जो इसमें पूरी भागीदारी थी तो उसकी तरफ इशारा था। कुल मिला के कांग्रेस के खिलाफ जो सोशल मीडिया में कम से कम मैंने देखा है वो लोगों की अपनी राय उनकी पार्टी के खिलाफ है, और इसका फायदा उठाते हुए मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने ये आज अरुण जेटली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस की जो 44 सीटें हैं और वामपंथी पार्टियों की 9 सीटें हैं, इन तमाम सीटों में कंस्टिट्यूएंसीज में उनके एक हर एक कंस्टिट्यूएंसी में एक मंत्री और 4 एमपीज जाएंगे और वहां सभाएं करेंगे, लोगों को बताएंगे कि मानसून सत्र कैसे किसने डिसरप्ट किया और क्यों किया।
ये थे जुबैर अहमद। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मैगी से प्रतिबंध हटा लिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नेस्ले इंडिया की मैगी के हर वेरिएंट के हर एक बैच के नमूने की जांच की जाए। मुंबई से पत्रकार अश्विन अघोर की रिपोर्ट।
नेस्ले इंडिया द्वारा मुंबई हाईकोर्ट में दायर मैगी बैन के खिलाफ याचिका पर फैसला देते हुए मुंबई अदालत ने आज बैन करने वाली आदेश को सेट असाइड कर दिया है, लेकिन मैगी मार्केट में बेचने की अभी कंपनी को परमिशन नहीं मिली है। कोर्ट के अनुसार हर बैच के हर एक वेरिएंट के 5 सैंपल्स देश भर में फैले हुए 5 अलग अलग एनएबीएल एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज में जांच किए जाएंगे, और अगर वो जांच रिपोर्ट सही पाई जाती है और अथॉरिटीज सेटिस्फाई होती है उसके बाद ही नेस्ले को भारत में मैगी बेचने की और उत्पादन करने की परमिशन मिलेगी। इस याचिका में दिल्ली स्थित एक एनजीओ कंज्यूमर ऑनलाइन ने इंटरवीन किया था। उनके लॉयर एडवोकेट अहमद अब्दी हमारे साथ है। अब्दी सर बताइए, आज के ऑर्डर से मतलब क्या निकलता है?
मतलब ये निकलता है कि आगे फ्यूचर प्रोडक्शन की बात को कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट में सेफ गार्ड करने की कोशिश की है। जो ऑर्डर कोर्ट ने सेट असाइड किया उसका इफेक्ट तो खत्म हो चुका है। वो तो मैगी ने पूरा माल मार्केट से खुद ही हटा लिया था, तो उसका कोई मैगी पे असर नहीं होने वाला है, एक्सेप्ट के कुछ पब्लिक रिलेशन में, कुछ प्रेस में पब्लिसिटी के लिए मैगी कह सकता है कि हमने वो ऑर्डर सेट असाइड करा दिया। उसका इफेक्टिवली मार्केट पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अभी आगे प्रोडक्शन और बेचने के लिए उनको फिर लैब्स में टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा, और उसके बाद जब अथॉरिटी सेटिस्फाई होंगी तभी वो मार्केट में चीज को ला सकते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी स्पेसिफिक तरीके से कोर्ट ने मेंशन किया है कि लेट की मात्रा देखी जाएगी सिर्फ। एक बात जो है वो ध्यान, क्योंकि यहाँ पे लेट को ही मुद्दा बनाया गया था, एमएसजी को ही मुद्दा बनाया गया था, लेकिन लेट के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो अथॉरिटीज देखें, जो कि जो उनकी सीमा होना चाहिए उसके आगे निकल जाए, तो उस पर भी कार्रवाई अथॉरिटीज कर सकती हैं। लेकिन अभी भी मामला जो है वो अथॉरिटीज के कोर्ट में है, क्योंकि उनको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगी कि ये जो स्पेसिफाइड नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से है। जब अथॉरिटीज सेटिस्फाई होंगी तभी उनको मार्केट में बेचने की परमिशन मिलेगी।
ये थे एडवोकेट अहमद अब्दी। हालांकि कोर्ट ने बैन करने वाला ऑर्डर सेट असाइड कर दिया है, लेकिन उसका नेस्ले इंडिया को जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से फायदा नहीं होगा जब तक वो अथॉरिटीज को सेटिस्फाइड नहीं करते।
ये रिपोर्ट थी मुंबई से अश्विन घोर की। भारत प्रशासित कश्मीर के शोपियां जिले में एक विस्फोट में 11 लोग घायल हुए हैं। विस्फोट जिस गांव में हुआ वहीं कल सेना के खोजी दस्ते पर फायरिंग भी हुई थी। स्थानीय लोगों ने घटना के लिए सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया है, लेकिन प्रशासन ने इसका खंडन किया है। दक्षिणी कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से हिंसक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और कई चरमपंथी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में मारे गए हैं। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
ये विस्फोट दक्षिणी कश्मीर के शोपियान जिले में तरानजन गांव में आज सुबह की नमाज के बाद हुआ। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि स्थानीय मस्जिद के बाहर जब विस्फोट हुआ तो लोग नमाज के बाद मस्जिद से निकल रहे थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 11 लोग घायल हैं और सभी खतरे से बाहर हैं। इस इलाके के नागरिकों ने बताया कि विस्फोट के बाद लोगों में डर फैल गया और काफी कोशिशों के बाद भी दिन भर प्रशासन ने इनकी खबर नहीं ली। कल भी इसी गांव के आसपास सेना का सर्च ऑपरेशन जारी था, जिस दौरान सेना पर संदिग्ध चरमपंथियों ने फायरिंग की और एक सैनिक को घायल कर दिया। तरानजन की पंचायत के सदस्य मुदस्सिर अहमद ने बीबीसी को बताया कि गांव के लोग इस विस्फोट के लिए सेना को ही दोषी मानते हैं।
फौज जो रात को थी, हमने भी एसटीएफ की गाड़ी रात 11:30 बजे हमने देखी, बिल्कुल हम रोड पे बसते हैं क्योंकि मैं ऊपरी मंजिल में सोता हूँ, मैंने भी देखी वो एसटीएफ गाड़ी यहाँ हमारे मतलब गेट जो है हमारे गेट के थोड़ा ऊपर वो रुकी थी रात को भी 11:30 बजे। तो इसका मतलब यही बिल्कुल जाता है कि उन्होंने ही रखा होगा, और क्या कौन रखेगा।
शोपियान के जिला मजिस्ट्रेट गुलाम मोहम्मद डार का कहना है कि इस घटना के बाद पड़ोस के गांव पहलीपोरा में भी लोगों को एक ग्रेनेड मिला, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने इसे नाकारा बना दिया। ताहम उन्होंने इस बात का खंडन किया कि विस्फोट में सेना या किसी सुरक्षा एजेंसी का हाथ है।
हाथ से उसको इस अमेरिका को या किसी और चीज को, तो उसकी वजह से वो ये ग्रेनेड था या और कोई कुछ किस्म का था वो स्पेकुलेशन। इस पे मैं बता दूं आपको, ये आर्मी ने किया या मिलिट्री ने किया।
गौरतलब है शोपियान और पड़ोस के जिला पुलवामा में कई महीनों से चरमपंथियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। पुलिस का कहना है कि इन जिलों के निकट घने जंगल हैं जिनमें चरमपंथियों ने ठिकाने बना रखे हैं। खुफिया पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इन क्षेत्रों में 60 चरमपंथी सक्रिय हैं, जिन्हें खोजने के लिए बड़े ऑपरेशन की योजना बनाई जा रही है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
क्या आपको पता है कि जो रुपए आप हाथ में ले रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक हैं? इन रुपयों में टीबी, डिसेंट्री और अल्सर फैलाने वाले खतरनाक संक्रमण मौजूद हैं, खासतौर पर उन रुपयों में जो पुराने हो गए हैं या फिर जो ज्यादा चलते हैं, जैसे 10, 20 और 100 रुपए के नोट। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स बायोलॉजी यानी IGIB के वैज्ञानिकों ने इन नोटों की DNA जांच में खतरनाक संक्रमण फैलाने वाले कुल 78 तरह के कीटाणुओं का पता लगाया है। इस संस्था के वरिष्ठ वैज्ञानिक S. रामचंद्रन से BBC संवाददाता सलमान रावी ने बात की।
कौन कौन से प्रोमिनेंट जो ये पाए गए हैं, बैक्टीरिया या फंगाई?
फंगाई तो कई सारे हैं, और बैक्टीरिया में ट्यूबरकुलोसिस, हेलिकोबैक्टर पाइलरी है जो अल्सर कर सकता है, डिसेंट्री वाले बैक्टीरिया भी पाए गए हैं, सर्दी खांसी वाली बीमारी उनके कीटाणु के DNA भी पाए गए हैं।
सिर्फ लोअर डिनोमिनेशन के नोटों में है या हायर डिनोमिनेशन के नोट में भी पाया गया इस तरह?
हमने जो नोट सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में है उनका ही हमने विश्लेषण किया है।
सर, ये DNA किस तरह से होता है, नोट्स का कैसे निकालते हैं?
आजकल एक पावरफुल मेटाजेनोमिक्स अप्रोच आ गया है।
कितने दिन लगते हैं सर इसको कंप्लीट करने में आप लोगों को?
कुल मिलाकर एक हफ्ते में तो पहला phase 1 तो हो ही जाएगी।
ये जो स्टडी है सिर्फ करेंसी नोट है उस पे था या फिर मोबाइल फोन्स और ये इस तरह की चीजों पे भी, जो पब्लिक यूटिलिटी की चीजें हैं जो एक्सचेंज करती हैं हैंड्स, क्या उसको भी आप लोगों का कुछ प्रपोजल है दिमाग में?
नहीं, अभी फिलहाल तो अभी तो हमने करेंसी नोट से ही ये कार्य किया है
जी।
अभी कई सारे देश में ये स्टडी कर रहे हैं उनके अपने नोटों के साथ, और इनफैक्ट गूगल का एक पेटेंट भी है कि एक बॉक्स है जिसको वो स्टेरिलाइज नोट स्टेरिलाइजिंग के लिए यूज करते हैं। स्टेरिलाइज मतलब वो जो भी कीटाणु होगा वो मर जाएगा।
तो इंडिया में ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है ना अभी?
ये तो एक छोटा बक्सा लगा तो सकते हैं, और हमें मालूम नहीं है कि ऐसा मिलता है कि नहीं बाजार में। हम लोग जैसे क्रेडिट कार्ड ये सब यूज करते हैं तो वो शायद ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन ये कहाँ कहाँ, ये तो कुछ कुछ दुकान में ही यूज होते हैं, ज्यादातर लोग
लेने जाएंगे, सब्जी लेने जाएंगे, कहाँ क्रेडिट कार्ड ले
जाएंगे। हाँ, वही दिक्कत होती है एक तरह। और वहीं से जब हम नोट्स लेते हैं तो उनमें ये सब कीटाणु पाए जाते हैं।
ये थे दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वरिष्ठ वैज्ञानिक S. रामचंद्रन। और अब एक खबर चीन से। चीन के उत्तरी शहर तियानजिन में एक औद्योगिक इलाके में हुए दो बड़े बम धमाकों में कम से कम 60 लोग मारे गए हैं। धमाकों में 400 से अधिक लोग घायल हुए हैं। चीन के सरकारी समाचार चैनल शिनहुआ के मुताबिक मरने वालों में 12 अग्निशमन कर्मचारी भी शामिल हैं। BBC संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए रोहित जोशी से।
सोशल मीडिया में अपलोड कुछ दूर से बनाए गए वीडियो में दिखाई दे रहा है कि धमाके के ठीक बाद आग का एक बड़ा सा गोला हवा में तैरा और फिर धुएं के गुबार ने उसे घेर लिया। बीबीसी की वेबसाइट में भी हेलीकॉप्टर से शूट किए गए एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ा इलाका धुएं के गुबार में डूबा हुआ है और इसके बीच कुछ इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक ये धमाका रात के करीब 11:30 बजे बिनहाई न्यू डेवलपमेंट जोन के एक गोदाम में हुआ। इस गोदाम में ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे। ये धमाका इतना भयानक था कि 2 किलोमीटर तक के इलाके में इससे खिड़कियों के टूटने की खबरें आ रही हैं। तियानजिन शहर के एक स्कूल में पढ़ाने वाली कैनेडियाई शिक्षिका मोनिका एंड्रयूज धमाके के वक्त अपने घर पर ही सो रही थीं। उन्हें लगा कि भूकंप आ गया है।
मैं उस वक्त सो रही थी, धमाके की एक भयानक आवाज ने मुझे जगा दिया। मुझे लगा जैसे सारी इमारत हिल रही हो। मैंने सोचा शायद भूकंप आ गया है, इसलिए मैं घबरा कर उठी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो सारा आसमान लाल हो गया था। मेरे सभी पड़ोसी अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे। मैंने भी जल्दी से अपने कुछ कपड़े उठाए। इस बीच एक दूसरा धमाका हुआ और फिर चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। सभी को ऐसा लग रहा था जैसे कि भूकंप आया हो।
ये थे मोनिका एंड्रयूज के शब्द। इस औद्योगिक इलाके में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाई गई डोरमिट्री भी इस धमाके के झटकों से तबाह हो गई और वहां मौजूद मजदूरों को किसी तरह अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इन मजदूरों में से एक ने बीबीसी को बताया, हमारी डोरमेट्री तबाह हो गई है, अब हम उसे देख भी नहीं सकते, वो पूरी तरह बर्बाद हो गई है। जिस वक्त ये हुआ वो बेहद भयानक था। जब पहले धमाके का झटका लगा तब मैं बिस्तर में लेटा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए मैंने भागना शुरू किया। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा तो दूसरा धमाका हुआ। ये इतना भयानक था कि जैसे पूरा आसमान टूट पड़ा हो। पलक झपकते ही पूरी छत नीचे गिर पड़ी। ये थे डोरमिट्री में रह रहे एक मजदूर के शब्द। धमाके के बाद से तियानजिन शहर के अस्पतालों में घायलों की भारी भीड़ जमा है। स्थानीय समय के अनुसार 2:00 PM तक 520 लोगों को अस्पतालों में भर्ती किया जा चुका था, जिनमें से 66 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बीजिंग के दक्षिण पूर्व में स्थित तियानजिन शहर देश का एक अहम बंदरगाह और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है।
ये रिपोर्ट थी रोहित जोशी की, और अब आपकी राय।
आपकी राय के साथ हाजिर हूँ मैं मोहनलाल शर्मा, और मेरे साथ मौजूद हैं चिट्ठियों के साथ इंदु पांडे।
मुझे लगता है कि कई बार आप मेरा नाम ना भूल जाएं।
नहीं भाई, आपका भूल जाए लेकिन श्रोताओं का नाम नहीं भूलना चाहिए।
लेकिन कोई है जो किसी को याद कर रहा है।
कौन है वो?
ये है हमारी पहली चिट्ठी, हर्ष चतुर्वेदी की, बैंगलोर से लिखते हैं। कहते हैं कि भाई राजेश जोशी जी कहाँ हैं आजकल?
राजेश जोशी लंदन में है इस समय, और राजेश जोशी जो बीबीसी की सिंघला सेवा है इस समय उसका काम देख रहे हैं। वैसे चाहते क्या हैं? मतलब क्या बहुत दिनों से सुना नहीं उन्होंने राजेश जोशी को इसलिए?
जी, वो कहते हैं कि इट्स हैड बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हर्ड अ रिपोर्ट फ्रॉम राजेश जोशी।
फिलहाल जैसे ही वो वापस आते हैं एक बार फिर से वो आपसे रूबरू हो जाएंगे।
और दूसरी बात कहते हैं, बल्कि अप्रिशिएट करते हैं कि राजेश प्रियदर्शी जी जो हैं वो चिट्ठियों के जवाब बड़े ही अच्छे तरीके से देते हैं और वो डिजर्व करते हैं अप्रिसिएशन।
वही, निश्चित तौर पर राजेश प्रियदर्शी आपके आजकल जो चिट्ठियां हैं उनका जवाब देते हैं, और हर सोमवार को वो आपसे मुखातिब होते हैं और हर बृहस्पतिवार को मैं आपसे मुखातिब हो जाता हूं। तो अगर आपको राजेश प्रियदर्शी का ये अंदाज और उनका जवाब पसंद आते हैं तो भाई ये जो संदेश है हम उन तक पहुंचा देते हैं।
और हमारे पास दूसरी चिट्ठी आई है रावी राज रहमान की। कहते हैं कि मैं रावी राज रहमान बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट के मिल्की गांव से हूं, और मैं बीबीसी अपने दादाजी और पापा जी के साथ सुनता हूं, और आज मेरी एज 21 साल की है।
वाह वाह, क्या बात है।
और जब से इन्होंने होस्ट संभाला है तब से ये सुन रहे हैं। एक प्रोग्राम आता है खेल और खिलाड़ी जो मुझे काफी पसंद है। अभी नया प्रोग्राम फिलहाल फैला उजियारा की ये बहुत ही तारीफ कर रहे हैं।
तो खेल और खिलाड़ी जो कार्यक्रम है वो एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसको कि आप शनिवार सुबह आदेश कुमार गुप्त लेकर हाजिर होते हैं। आपको पसंद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आपने कहा है कि फैला उजियारा कार्यक्रम जो है वो बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जिनकी लगातार चिट्ठी आ रही है, उनको पसंद आ रहा है। और अगर आपको पसंद आ रहा है, कुछ नई चीजें आपको जानने को मिल रही हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो गई।
आगे एक बात कहते हैं कि मोदी जी को साउंड पोल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए।
मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है तो उम्मीद है कि हो सकता है कि उनके एजेंडे में कुछ इस तरह का भी अभियान हो।
प्रगति सक्सेना ने एक प्रोग्राम पेश किया था 11 अगस्त को, नारी सशक्तिकरण और कुंठित मानसिकता, जिसके लिए हमारे पास 2 चिट्ठी आई है। एक है अखलाक अहमद इलाहाबाद से, दूसरे हैं ये अभिनंदन कुमार पहले तो अखलाक की बात हम लेते हैं, कहते हैं कि भाई जो प्रोग्राम इन्होंने किया था उसमें जो शब्द यूज किए थे वो एक आम आदमी की समझ से परे थे।
मतलब क्या बहुत ही कठिन शब्दावली का इस्तेमाल किया था, कठिन भाषा, क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल
जी किया। और कहते वो समझ से परे थे और कुल मिला के अच्छा नहीं लगा।
अच्छा, और दूसरी चिट्ठी क्या कह रही है?
दूसरी चिट्ठी भी शब्द के बारे में तो नहीं लेकिन शब्दों के पीछे भाव के बारे में कहती है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि लेखिका अर्चना वर्मा का ये कहना कि भले ही वो लोग दिल्ली में आकर रह रहा हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, उनकी मानसिकता अभी भी लोअर क्लास की है, इन्हें बहुत खराब लगा कि एक लेखिका के मुंह से ऐसी बात सुनकर शायद उन्हें नहीं मालूम कि आज उस समाज को जिसको कि वो बुरा मानती हैं, मिडिल क्लास कहती हैं, उसमें जितनी इंसानियत है वो कहीं और दूसरी जगह नहीं मिलेगी आपको।
ये जो प्रगति सक्सेना का कार्यक्रम था, ये जो रिपोर्ट थी, ये नारी सशक्तिकरण पर आधारित थी। सबसे पहले अखलाक भाई, कभी कभी होता यह है कि जब जिस विषय पर हम बात कर रहे होते हैं, निश्चित तौर पर हम सभी की कोशिश होती है कि जो आम जनजीवन में शब्दों का इस्तेमाल होता है उनका इस्तेमाल हम करें, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ सीखना भी तो है हमें, और कुछ सीखना है उसके लिए हम कुछ अच्छे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो भाषा को सिखाने का एक जरिया रेडियो भी है, और कभी कभी हम कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और हो सकता है कि वो तमाम अच्छे शब्द संभवतः कभी कभी समझ से परे हो जाते हैं, लेकिन अगर मुझे एक नया शब्द सुनाई देता है तो मैं उसके बारे में कभी कभी खोजने की कोशिश करता हूं और ये पता लगाने की कोशिश करता हूं कि इसका मतलब क्या है। तो एक जिज्ञासा वहां पर पैदा होती है कठिन शब्दों के साथ। अभिनंदन भाई, जो आप अर्चना वर्मा जी की बात कर रहे हैं, ये एक उनका अपना व्यू पॉइंट है, और इस रिपोर्ट में सभी तरह के जो दृष्टिकोण हैं, नजरिए रखने की कोशिश की गई थी, और हो सकता है कि हर नजरिए से हम सहमत नहीं होते।
एक हमारे पास चिट्ठी आई है जिसे मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इन्होंने
बहुत ही सुंदर राइटिंग है, नीले रंग की,
बहुत ही प्यारी, और ये लिखी है चिट्ठी हमें विष्णु वर्मा, ककोली, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश से। और बहुत दिनों बाद ऐसी चिट्ठी देखने को मिली है,
एकदम शब्द ऐसे लग रहे हैं छपे हुए,
मोती
मोती की तरह।
लिखते हैं कि बीबीसी हिंदी सेवा के पूरे परिवार को सादर अभिवादन, और साहित्य सम्राट प्रेमचंद्र पर प्रसारित विवेचना बहुत अच्छी लगी जो 31 जुलाई को प्रस्तुत की गई थी, तो भाई आपको हार्दिक बधाई,
बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो प्रेमचंद जी पर विवेचना थी आपको अच्छी लगी, और हमें लगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई, और इसी तरह हमारी कोशिश ये है कि अच्छे अच्छे कार्यक्रम आप तक पहुंचाते रहें, अगर इनमें कुछ कमियां हैं तो वो भी हमें जरूर बताएं। और अब हमारे पास लगता है इतना वक्त
नहीं है, अब इनकी चिट्ठी पूरी पढ़नी है भाई।
अच्छा पढ़िए।
आगे लिखते हैं कि फैला उजियारा मूल रूप से श्री सुनील खिलनानी द्वारा लिखा गया है, और ये कभी नहीं बताया जाता कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है। जिसने भी हिंदी अनुवाद किया है उसको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयां।
बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम आपने ये जानने की कोशिश तो की कि आखिरकार इसके पीछे कौन लोग हैं जो कि इसका अनुवाद कर रहे हैं। दरअसल एक पूरी टीम है, और वो पूरी टीम इसका अनुवाद कर रही है, जिसमें कि हमारे दफ्तर के कुछ लोग शामिल हैं और कुछ दफ्तर से बाहर के लोग शामिल हैं। चंद नाम मैं ले सकता हूं, एक नाम संदीप सोनी का है जिन्होंने अभी जो आप सुन चुके हैं कुछ एपिसोड उनका अनुवाद किया है, और उसके अलावा राणा धीरेन्द्र हैं, उन्होंने इस श्रृंखला में कुछ एपिसोड का अनुवाद किया है, और उम्मीद है कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो हमारी मेहनत सफल है। तो अब कार्यक्रम में और
चिट्ठियां हम नहीं शामिल कर सकते क्योंकि वक्त हो गया है जाने का,
तो विदा ले लेते हैं, और पता तो आप जानते हैं इसलिए दोहराने की आज जरूरत नहीं। नमस्कार।
नमस्कार।
और मुख्य समाचारों से पहले एक खबर बिजनेस जगत से। हीरो ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से एक हीरो साइकिल के सेवा मुक्त अध्यक्ष ओपी मुंजाल का लुधियाना में निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। ओपी मुंजाल के एक बेटे और चार बेटियां हैं, उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को लुधियाना में होगा। मुंजाल पिछले महीने ही हीरो मोटर ग्रुप के अध्यक्ष पद से हट गए थे और बिजनेस में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे थे। अब उनके बेटे पंकज मुंजाल ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। ओपी मुंजाल ने अपने तीन भाइयों के साथ मिलकर वर्ष 1944 में साइकिल के कल पुर्जे बनाने से अमृतसर में अपने व्यापार की शुरुआत की थी। और अब मुख्य समाचारों के लिए सुशीला सिंह के पास चलते हैं।
बीबीसी समाचार। चीन के औद्योगिक इलाके तियनजिन में हुए दो बड़े धमाकों में कम से कम 50 लोग मारे गए हैं और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अलकायदा के नेता अयमन अल जवाहिरी, तालिबान के नए नेता मुल्ला अख्तर मंसूर को उन्होंने अपना नेता स्वीकार कर लिया है। ग्रीस की अर्थव्यवस्था ने चौंकाते हुए विकास की राह पर लौटने के संकेत दिए हैं। ताजा आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि साल की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में 1% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर पूर्वी बगदाद में हुए एक धमाके में 60 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इराक में अधिकारियों का कहना है कि ट्रक में रखे गए बम से ये धमाका हुआ। हीरो ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से एक और हीरो साइकिल के सेवामुक्त अध्यक्ष ओपी मुंजाल का लुधियाना में निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ मुझे विनीत खरे को सभी सहयोगियों के साथ दें अनुमति। स्टूडियो संभाला था अजीत सारथी ने। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी घटना चक्र में 9:30 बजे।